Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. देखते ही देखते रमजान मुबारक का महीना अपने अख्तिताम तक पहुंच चुका। आज सऊदी अरब मिडल ईस्ट में 27वां रोजा है, और जो इंडिया पाकिस्तान है वहां पर 26वां रोजा चल रहा होगा अभी। तो नहीं, आज 27वां तो नहीं, आज तो 28वां रोजा है। सुभान अल्लाह, बस एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बाकी बच गए हैं। तो रमज़ान मुबारक में तो हमारी ये तरतीब रोज़ाना की रहती है, क्योंकि ये है ही शहरुल कुरान, और अल्लाह ताला मौका देता है कि अपने कुरान मजीद के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। अल्लाह की तौफीक से होता है, तो फिर इसमें 1 घंटा रोज़ाना का इस दरस कुरान के लिए फिर मुख्तस कर लिया जाता है। लेकिन फिर जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वाली तरतीब नहीं रहती, और वो वाली सहूलियात भी नहीं रहती अल्लाह ताला की तरफ से। वैसा जो है वो इंतज़ाम भी जो खसूसी रमज़ान के लिए अल्लाह ताला ने किया हुआ है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से फिर वो रोज़ाना का मामला नहीं चल पाता है, बल्कि फिर हफ्ते में 2 दिन, ख़वातीन में भी 2 दिन सुबह को क्लास होती है, और मर्दों में भी 2 दिन शाम को क्लास होती है। तो जो लोग उन क्लासेस में पहले से शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उनको एक दावत है हमारी तरफ से कि वो उन क्लासेस के अंदर भी अपना खुद को एनरोल करवा लें। बेसिकली एनरोलमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ नाम बताना होता है। जो कल बात हुई थी ना, नाम बताना होता है, उसके लिए भी कुछ लोग तैयार नहीं होते। बहरहाल, तो सिर्फ नाम बताना होता है, फ़ोन नंबर तो वैसे ही आ जाता है व्हाट्सएप के ऊपर, और हम उसको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। फिर उसके बाद जो है ना, फिर आपको वो मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। जब क्लास होती है उससे पहले रिमाइंडर आ जाता है, लिंक उसके अंदर मौजूद होता है। ज़रा सी उंगली को तकलीफ देनी पड़ती है उस लिंक के ऊपर उंगली लगाने की। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना आसान अल्लाह ताला ने कर दिया कि बस एक शहादत वाली उंगली को हल्की सी तकलीफ दी, इधर से टच किया, उधर से जो है वो बोलना शुरू हो गया दूसरी तरफ से, वो ठीक है, आवाज़ आनी शुरू हो गई। और फिर अल्लाह का कुरान है, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का खुलासा तफसीर है, और हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे ऐसे अकाबरीन के हीरे और मोती जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। कितना मेहनत करनी पड़ी ना इसके लिए, कोई मेहनत करनी पड़ी, कोई भी मेहनत, अपने घर से एक कदम बाहर भी नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने तो सब कुछ मुकम्मल कर दिया है, सारी की सारी हुज्जतें हमारे ऊपर तमाम कर दी हैं। बस अल्लाह ताला हमें इनकी नाकदरी करके अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बन जाने से हमें हमारी हिफाजत फरमाए। तो बस हफ्ते के 2 दिन क्लासेस होती हैं, तो उनको अगर हम गौर से सुन लेंगे और तवज्जो से ज़रा नोट्स वोट्स बना लेंगे, थोड़ी सी दोहराई कर लेंगे, तो अल्लाह ताला इसी को हमारे लिए जो सफिशेंट, जो काफ़ी शाफी ज़रूरी इल्म है, उसका मूजिब बना देंगे, यानी उस तक पहुंचने का सबब बना देंगे, और फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर फिर अमल की भी तौफीक अपने रहमत से अता फरमा देंगे। जो अल्लाह ने इंतज़ाम किया है ना, इस इंतज़ाम की अहमियत को समझना असल में मकसूद है, ठीक है। अगर हम अल्लाह के किए हुए इंतज़ाम जो कि हमारे घर तक अल्लाह ने पहुंचा दिया है, और हमारे पहले कहते थे डोर स्टेप्स तक पहुंचा दिया है, अब तो डोर स्टेप्स का भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो फिंगर टिप्स तक पहुंचा दिया है और कानों तक पहुंचा दिया है, ठीक है ना। यानी हेडफोन जो है वो कानों के अंदर तक घुस जाते हैं ना, तो पहले होता था डोर स्टेप्स तक पहुंचा दिया, अब होगा कानों के अंदर तक पहुंचा दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो ये है अल्लाह ताला का इंतजाम। अब जो इसकी कदर कर लेता है, जो इसके ऊपर फोकस कर लेता है, जो उसको जो है वो इस्तेमाल कर लेता है अपने फायदे के लिए, अल्लाह ताला इसके जरिए से उसको फिर बाकी सब कुछ अता फरमा देते हैं, ठीक है ना। और जो इसका इसकी कदर नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला उसको दर दर की ठोकरों में लगा देते हैं, दर दर की ठोकरों में लगा देते हैं, और उसको अपना मकसूद फिर भी हासिल नहीं होता, उसको अपना मकसूद फिर भी हासिल नहीं होता, ठीक है। माँ बाप अल्लाह ताला ने रिस्क के लिए घर में इंसान के रखे ना, ठीक है। अब अब्बा जो है वो बाहर से रिस्क कमा करके लाते हैं, और अम्मा जो है वो उस रिस्क को पका पका करके और सजा सजा करके हमारे सामने पेश करती हैं, ठीक है। तो ये अब्बा और अम्मा का बंदोबस्त किसने किया? अल्लाह ताला ने किया, ठीक है। कि अब्बा बाहर से समेट समेट करके लेकर के आते हैं, मेहनत कर करके लेकर के आते हैं, और अम्मा जो है फिर किचन के अंदर मेहनत कर करके उसको हमारे सामने रखती हैं। और कोई कहे कि नहीं, मैं तो ना, मैं इसकी बजाय मैं अपना खाना पीना और रिस्क जो है ना, मैं इधर उधर से तलाश करूंगा, ठीक है। तो जो टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ है ना, जो कि अल्लाह ने माँ बाप के वास्ते से रखवाया है, ये उसकी बजाय जो है वो कभी मोहल्ले में फलाने घर में जाकर के खाना खाने की कोशिश कर रहा है, कभी मोहल्ले के किसी दूसरे घर में खाना खाने की कोशिश कर रहा है, कभी किसी तीसरे घर में खाना खाने की कोशिश कर रहा है, कभी जो है वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे आप? खुद ही जवाब दें इसका, खुद ही इस बात का जवाब दें, इसको क्या कहेंगे, ठीक है ना। इसको नाकदरी कहेंगे, इसको नाशुक्री कहेंगे, ठीक है। और इसका अल्लाह ताला का अजाब जो होता है उसके ऊपर शदीद होता है, ठीक है। तो इधर उधर मुंह मारने की बजाय हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या इंतजाम किया, और किसी और के लिए कोई और इंतजाम किया, भाई उसका मसला है कि वो अल्लाह ताला ने उसके लिए जो इंतजाम किया है वो उसके ऊपर फोकस करे, उसको फोकस करने दें, उसके भी पीछे ना पड़ जाए कि जिसका अल्लाह ताला ने उसके लिए जो इंतजाम किया उसको छोड़ करके वो इधर आ जाए, क्योंकि मेरी माँ बाप दादा अच्छे हैं, ठीक है ना। क्या ख्याल है भाई? हर एक के लिए अल्लाह ताला ने माँ बाप रखे हुए, ठीक है ना। तो वो अपने माँ बाप के साथ फोकस करें, किसी और को उसके माँ बाप के साथ फोकस करने दें, आप अपने माँ बाप के साथ फोकस करें, ठीक है ना। ना तो खुद फोकस करते हैं और ना दूसरों को फोकस करने देते हैं। हाँ, ये और बात है कि आपके भाई बहन हैं जिनका एक ही माँ बाप है, ठीक है ना। अब एक दूसरी सिनारियो क्या है कि आपके अपने भाई बहन हैं, उनके तो वही माँ बाप है ना जो आपके माँ बाप हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए फिर? चलिए ये आप बता दें ताकि इतना पता चल जाए कि हाँ, यू हैव बिन फॉलोइंग, ठीक है ना, कि आपकी बात समझ में आ रही है। तो अब इसका जवाब दें कि आपके अपने भाई बहन हैं जिनके माँ बाप वही हैं जो कि आपके माँ बाप हैं, अब क्या करना चाहिए? जी, अब क्या करना चाहिए? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या याद दिलाएं? इन्होंने जवाब दिया याद दिलाएं, फिर क्या याद दिलाएं? उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उन्हें माँ बाप से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना, और जुड़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। तरगीब दें कि अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी करें, अपने माँ बाप के ऊपर फोकस करें, ठीक है ना, अपने माँ बाप के साथ जोड़ने की मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं कि मोहल्ले के दूसरे घरों में जा जा करके जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने पड़े हुए खाने को जो उन तक पहुंचाया गया है उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, आपको शायद आपका थोड़ा सा पेट भर जाए, बज़ाहिर आपका पेट भर जाए, लेकिन जो नेमत अल्लाह ताला ने पहुंचाई थी उसकी तो आपको नाकदरी की सजा मिलनी शुरू हो जाएगी ना, ठीक है। यही सारा का सारा मामला यही दीन के अंदर भी चलता है। जिस तरह हम ये फिजिकल खाने पीने की बात कर रहे थे ना, ये हम एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, दुनियावी खाना पीना, ठीक है ना। यही मामला जो है वो दीन के अंदर भी चलता है। दीन में भी अल्लाह ताला ने माँ बाप अता फरमाए होते हैं। ये और बात है कि दीन के अंदर जो ऊपर होते हैं ना, वो माँ भी जो होती है वो भी एक तरह का छोटा बाप ही होता है। नहीं, तो दीन में भी यही होता है। बहरहाल वो बात समझने के लिए, माँ बाप दीन में भी इसी तरह से माँ बाप होता है, ठीक है, जिनसे अल्लाह ताला जो है वो दीनी रिस पहुंचाता है, रूहानी रिस पहुंचाता है, यानी इल्म पहुंचाता है, मारिफत पहुंचाता है, ठीक है। अब अगर हम उसकी कदर ना करें तो फिर हमें कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला और हम नाशुक्री के मुर्तकिब हो जाएं, ठीक है। बस थोड़ी सी तरतीब जो है वो ये होती है कि दुनियावी एतबार से माँ बाप जो है ना, वो बचपन से नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। दुनियावी माँ बाप जो होते हैं वो जब आप आंख खोलते हैं तो आपको आपके सामने नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को देखते 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 जो है वो आप बड़े हो रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं। लेकिन दीनी एतबार से अक्सर ऐसा होता है कि जो माँ बाप अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए होते हैं ना, अल्लाह ताला ने जिन माँ बाप को आपके लिए मुकर्रर किया हुआ होता है, तो जो दीनी एतबार से माँ बाप होते हैं वो आंख खोलने के वक्त नजर नहीं आ रहे होते, ठीक है। वो आंख खोलने के वक्त नजर नहीं आ रहे होते, उस्ताद और शेख ये आंख खोलने के वक्त नजर नहीं आ रहे होते। ये इंसान बड़ा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा जवान होता है, फिर जो है वो जब वो इस तरफ मुतवज्जो होता है, तब अल्लाह ताला ने जिनको मुकर्रर किया हुआ था ना, उनके साथ फिर अल्लाह ताला मिलवा देते हैं, ठीक है ना। गोया के दीनी एतबार से माँ बाप जो है वो कहीं और फिर रहे हैं और औलाद जो है वो कहीं और फिर रही है। फिर जिंदगी में एक मौका ऐसा आता है कि जिसमें अल्लाह ताला इन दोनों को आपस में मिलवा देते हैं, फिर वहां से जो है वो आगे ये एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। ये फर्क है खाली, दुनियावी एतबार से जो माँ बाप होते हैं वो आप आँख खोलते ही उनको देखना शुरू कर देते हैं। दीनी एतबार से भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके शेख हैं वो हो सकते हैं आपके अपने अब्बा के भी शेख हों, तो अब्बा के जो चूके शेख थे तो इस वजह से जब आपने दुनिया में आंख खोली तो अब्बा के शेख ने ही आपकी तहनीक करी, अब्बा के शेख ने ही जो है वो आपको आपके कान में अजान दी, और अल्लाह की मर्जी ये थी कि वही आपके शेख बने। बड़े होने के बाद आपने उन्हीं को अपना शेख के तौर पर, यानी अल्लाह ताला ने फिर आपके दिल में बात डाल दी कि हाँ यही आपके शेख हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो वही शख्सियत जो है वो आपके लिए रूहानी माँ बाप भी होंगे जो के आपने बचपन से देखे थे। लेकिन उम्मीदी तौर पर ऐसा नहीं होता, बल्कि बड़े होने के बाद फिर अल्लाह ताला मुलाकात करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मुलाकात करवा देते हैं ना, तो फिर उसके बाद ये कदरदानी जो है वो हमारे ऊपर वाजिब हो जाती है, और अल्लाह ताला फिर यही इसी वास्ते से फिर करवाते हैं। हमारी दीन की तबलीग क्या है, यानी जो दीन की तबलीग है, ठीक है ना, दावत व तबलीग का काम, ये क्या है, ठीक है ना। इस मिसाल की रोशनी में बताएं कि दीन की दावत देने का काम जो है वो क्या है, इस मिसाल की रोशनी में बताएं, ठीक है। दीन की दावत कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, किन अल्फाज से बयान करेंगे, दीन की दावत का मतलब क्या है, ठीक है। इस मिसाल की रोशनी में सवाल कर रहे हैं, जब तक इनका एक लंबा सा जवाब आया हुआ था उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको भी बताएं अपने ही माँ बाप पे फोकस करने में खैर है, जब वो मौजूद हैं तो उनसे ही फायदा उठाओ, ना कि बाहर जाओ बदगुमानी और डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं, इस तरह ना घर से सीख पाएगा ना बाहर से सीख पाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। इनको बात समझ में नहीं आई, सवाल समझ में नहीं आया, तो इन्होंने जो एक हदीस याद करी हुई थी कहीं से, तो उसके जुम्मन में जवाब दे दिया है कि दीन क्या है, खैर ख्वाही है, नहीं अद्दीन और नसीहा। हमने कितनी बार बोला कि अभी जो मिसाल सामने रखी थी उसकी रोशनी में बताएं, लेकिन सुनना नहीं है ना। तो बहरहाल, तो दीन की तबलीग क्या है, आप बाद में पूछेगा अब। हाँ, यहाँ मर्दों में जवाब आया कि अपने रूहानी बाप से जोड़ना, अपने रूहानी बाप से जोड़ना, बिछड़े हुए बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाना, ठीक है, सही है। हमें नहीं पता कि उनका वालिद कौन है, रूहानी वालिद कौन है, हमें किसी इंसान का नहीं पता कि उनका रूहानी वालिद कौन है, ठीक है, लेकिन हम खैरख्वाही के जज्बे के साथ उनको रूहानी वालिद, पोटेंशियल रूहानी वालिद से जो है ना वो जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है, पोटेंशियल रूहानी वालिद, हो सकता है वो उसका रूहानी वालिद ना हो, अल्लाह ताला ने किसी और को बनाया हुआ हो, लेकिन हम तो खैरख्वाही के तौर पर जो भी हमारे नजदीक एक फायदे का हमारे वालिद साहब हैं, फायदा पहुंच रहा है उनसे रूहानी, ठीक है ना, तो हम लोगों की खैरख्वाही में उनको भी जो है ना फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यही है दीन किताब, ठीक है ना। इसको बहुत ही अमूमी अल्फाज में कहा जाता है कि अल्लाह के पिछड़े हुए बंदों को या बिखरे क्या कहते हैं गुमराही का शिकार बंदों को अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करना, है ना, ये कहते हैं ना अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करना, यही है दावत और तबलीग, ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल क्या है, ये तो एक हाई लेवल दावत और तबलीग की डेफिनेशन हो गई ना कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करना, लेकिन इसकी तफसील क्या है, इसकी डिटेल क्या है, वो डिटेल ये है कि उनको जो है ना वो किसी ऐसी दीनी शख्सियत के साथ जोड़ने की कोशिश करना जो कि उनको शैतान की गुमराहियों और वसाविस से बचा बच बचा करके अल्लाह और उसके रसूल से जो है वो जोड़ने की मेहनत कर सके, ठीक है ना, उनको रास्ता दिखा सके, रास्ते में शैतान और नफ्स जो है वो रुकावट बनते हैं, ये शेख साहब जो है वो उनको इस रुकावटों से बचा बचा करके अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने की मेहनत करेंगे, ठीक है, ये तफसील है इसके अंदर, फर्क कोई नहीं है दो, वो अलग चीज, ये अलग चीज के वो अल्लाह को जोड़ने वाली मेहनत हो रही है और ये जो है वो बंदे से जोड़ने वाली मेहनत हो रही है, नहीं ये अलग अलग मेहनतें नहीं है, ये एक ही मेहनत है, ठीक है, दूसरों को अपने रूहानी माँ बाप से जोड़ने, बेसिकली इसको अगर इस तरह से कहा जाए कि हर एक को उसके रूहानी बाप से जोड़ने की मेहनत करना, ये दीन की मेहनत है, ठीक है ना, अब जाहिर है आप अब सारी दुनिया के रूहानी बापों से तो लोगों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि आप खुद उनसे नहीं जुड़े हुए, तो आप जिनसे जुड़े हुए उन्हीं से फिर ऑब्वियसली फिर उन्हीं से दूसरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, भाई आप कहीं से खुद नहीं जुड़े हुए तो आप उनको कैसे उनसे जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो जिनसे आप जुड़े हुए हैं आप उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि दैट इज व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू, ठीक है, तो दीन की मेहनत ये होती है, लेकिन इसमें जो है ना वो यानी ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं बस तुम मेरे शेख से जुड़ जाओ वरना तो तुम जो है ना वो गुमराह हो जाओगे और बर्बाद हो जाओगे, एंड देर इज नो अदर वे अदर देन माई शेख, नो यू डोंट नो वट हिज और हर शेख इज, हु हर शेख और हर हिज शेख इज, आपको ये बात नहीं पड़ा पता ना, ठीक है, तो इस वजह से दावत के काम में जो कि एक्चुअली शेख से जोड़ने का काम है इसके अंदर जो है ना बहुत बैलेंस रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, इसमें भी बैलेंस रखने की जरूरत पड़ती है, इसमें भी ओवर ना हो जाए, ये एज्यूम ना कर लें कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने उसका रूहानी बाप किसको बनाया, एज्यूम ना कर लें अपनी तरफ से खैरख्वाही की नीयत से कि जब तक आपका कोई और रूहानी बाप आपको नहीं मिला है तो भाई मेरे एक रूहानी बाप है, हो सकता है अल्लाह ताला ने ना इनका नाम लिखा हुआ आपके बाप की जगह पर, हो सकता है आप आकर के ट्राई तो करें, चेकआउट तो करें, ठीक है ना, आप चेक तो करें कम से कम, ठीक है ना, हो सकता है हो सकता है ना हो, ठीक है ना, तो इफरात और तफरीत से बच करके ये वाली मेहनत करना, ठीक है ना, हाइपर ना हो जाना इसके अंदर बिल्कुल ही, कि जिसको गुलू कहते हैं कि नहीं बस मेरे भाई मेरे शेख मेरे लिए सब कुछ है, सारी दुनिया के लिए सब कुछ थोड़ी है, ठीक है ना, सारी दुनिया के लिए मेरे शेख सब कुछ है, नहीं भाई आपके शेख जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नहीं है, ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम थे जो पूरी की पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए थे अपने जमाने की, अपने जमाने की और आइंदा आने वाले जमाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम भेजे गए थे पूरी इंसानियत के लिए, मेरे शेख को थोड़ी पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए, वो तो मेरे लिए भेजे गए हैं ना, ठीक है ना, तो मेरा काम है कि मैं अपने अपने आप को उनसे फोकस करके रखूं और मैक्सिमाइज करूं अपने बेनिफिट को, ये कोई थोड़ी है कि सारी दुनिया को जो है वो समझूं कि नहीं वो बस मेरे शेख में ही हिदायत है और किसी में हिदायत मिलेगी नहीं उनको, अगर इनको माना तो फिर ये मुसलमान बनेंगे, अगर इनको ना माना तो फिर ये काफिर हो जाएंगे, नो, इसको गुलू कहते हैं, ठीक है, सेल द मैसेज नॉट द पर्सनैलिटी, इतना आसान नहीं है जो आपने लिखा है ये बात, इसको समझना, ठीक है, तो इस वजह से इसको रहने दो, और क्या क्या लिखा, माँ बाप से सही इस्तेफादा हासिल करना और दीन सीखने की दावत देना, मॉडल से जोड़ना, मॉडल से जोड़ना। मॉडल जो है ना वो बगैर उस्ताद के होता नहीं, ठीक है? उस्ताद होगा तो मॉडल होगा, उस्ताद नहीं होगा तो मॉडल नहीं होगा, ठीक है? तो इस वजह से उस्ताद एंड मॉडल गो हैंड इन हैंड। अपनी लाइफ किस तरह से चेंज हुई शेख से जुड़ने से, अपनी लाइफ किस तरह चेंज हुई शेख से जुड़ने से। जो लोग अपना शेख तब्दील करते हैं उनके इस अमल के बारे में क्या कहा जाएगा? जो लोग अपना शेख तब्दील करते हैं उनके इस अमल के बारे में क्या कहा जाएगा? अच्छा सवाल है, लेकिन ज़रा कॉम्प्लेक्स इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। एक मिनट ठहर जाए।
Recording stopped.
नहीं, ठहर जाए से मुराद ये नहीं था कि हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, ठीक है? ठहर जाए से मुराद ये था कि इनका जवाब अभी दूसरे मैसेजेस पढ़ने के बाद फिर दे देने का रहा। क्या हो गया इनको? चलिए
Recording in progress.
देखें, दो जो लोग अपना शेख तब्दील करते हैं ना उनके इस अमल के बारे में क्या क्या कहा जाएगा? दो चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है ना? एक मतलब सबसे पहली बात तो यही है कि वो जिसको उन्होंने अपना शेख एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो अब क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना? रीजन क्या है चेंज करने का उनके, ठीक है? तो इस रीजन को देखना पड़ेगा, सही? अगर वो रीजन जो है वो जस्टिफाइबल शेख रीजन हो, ठीक है ना, और उसकी जो है वो सही अंडरस्टैंडिंग उनके पास हो, तो फिर इसके अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है? शेप को तब्दील करने में कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो रीजन जो है वो गलत रीजन हो तो फिर जो है वो मसला ही मसला है कि भाई आपने अपने बाप को तो छोड़ दिया, अब जो है वो आप दुनिया में दूसरे बाप तलाश करते फिर रहे हैं कि किसी और को अपना बाप बना लें, तो वो तो नहीं होगा। वो तो एक बाप था जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपको जोड़ दिया था, अब आप जो है वो दुनिया अब जहां में बाप तलाश करते रहे वो तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अब तो उनके लिए आप दुआ करें वो आपके बाप जो है वो चले गए कहीं या आप उनसे दूर चले गए हैं, तो आप उनको दुआ में याद रखें ज्यादा सर। बहरहाल दूसरा बाप तो नहीं मिलने वाला, ठीक है? लेकिन अगर वो बाप सही नहीं था, ठीक है, और आप समझ रहे थे कि वो आपका बाप है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई ये तो मेरे डैडी ऐसे तो नहीं हो सकते, दिस वॉज नॉट माई राइट डैडी, ठीक, तो फिर तो चेंज करना पड़ेगा ना फिर, ठीक है? तो अब इसकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, ठीक है, कि अगर शेख का अकीदा अहले सुन्ना वल जमात के जो उलमाए कराम हैं उनके अकीदे से के खिलाफ हो, उनके अकीदे के खिलाफ हो, या पहले तो सही अकीदा था लेकिन बाद में वो अकीदा खराब कर दें, अकीदा बदल दें, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके रूहानी अब्बा थे ही नहीं, ठीक है ना? तो अब उनको अबैंडन करें, उनसे अपना ताल्लुक तोड़ें, खत्म करें जो भी आपका मिलने जुलने वाला था, और जो है ना वो फिर से तलाश में लग जाएं, क्योंकि अभी तक आप अपने शेख तक पहुंचे ही नहीं थे असल, ठीक है ना? यानी अगर वो अपना अकीदा खराब कर लें, या पहले से आपको पता ही नहीं था कि सही अकीदा क्या होता है, आपने किसी शेख के साथ जाके बैत कर ली, इस्लाही ताल्लुक बना लिया, आपको पता ही नहीं था सही अकीदा होता है क्या, बाद में आपको पता चला कि भाई उनका तो अकीदा ही खराब है, ठीक है ना? तो देन इट्स वाजिब कि उस शेख को आप अबैंडन करें और फिर से तलाश में लग जाए शेख, ठीक है? तो ये जेन्युइन रीजन है शेख को तब्दील करने का, ठीक है ना? और वो भी इसलिए क्योंकि ये आपका शेख था ही नहीं, ये आपको अल्लाह से जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अपना अकीदा यही खराब है, ये आपको अल्लाह से जोड़ ही नहीं सकता। तो भाई शेख की डेफिनेशन तो ये होती है कि जो आपको अल्लाह ताला से यानी नबी अलैहिस्सलाम से और अल्लाह ताला से जोड़े, ये शेख की तारीफ होती है। तो भाई ये साहब कैसे जोड़ेंगे जब इनका ये खुद नहीं जुड़े हुए हैं, है ना? और ये नहीं कि खाली गुनाह में मुबतला है, गुनाह में मुबतला होने से भी एक्चुअली शेख बदलने की जो है ना वो जस्टिफिकेशन नहीं बनती है, ठीक है ना? अगर शेख गुनाह में मुबतला हो जाए तो इस पर भी जो है वो शेख तब्दील करने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि तौबा का रास्ता उसके लिए खुला हुआ है, और जो है वो गुनाह को नेकी कह के तो नहीं गुनाह कर रहा ना, गुनाह में मुब्तला हुआ है लेकिन उसने गुनाह को नेकी कहना तो नहीं शुरू कर दिया। गुनाह को अगर उसने नेकी कहना शुरू कर दिया इसका मतलब यह है कि उसका अकीदा खराब हो गया, अब उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको अबैंडन करना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे गुनाह हो गया है या इवन गुनाह हो रहा है लेकिन नादिम है, एक्सेप्ट करता है कि वो गुनाह है, ठीक है, तो फिर उसको टाइम देना होता है, ठीक है ना, उसकी तरफ से तावील करनी होती है, इवन शेख के लिए दुआएं मांगनी होती है, ठीक है ना। ये क्या मतलब, बस छोटों के लिए दुआएं मांगनी है, बड़ों के लिए दुआएं नहीं मांगनी। ये जो इसारे सवाब की दुआ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, बड़ों के लिए करते हैं, छोटों के लिए करते हैं, वो जो चले गए दुनिया से उनके लिए इसारे सवाब करते हैं, उनकी मगफरत की या उनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं करते हैं, तो भाई बड़ों के लिए भी तो दुआएं करनी होती है ना। तो अगर शेख भी ऐसे किसी मसले में फंस जाए, जैसे कि इतना बड़ा वाकया जो हजरत जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आप बीती में बयान किया, हजरत अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, ठीक है, और जो है वो हजरत जी हमारे अक्सर इसको बयान करते हैं अपने बयान, अभी परसों तरसों भी बयान किया था इस बात पर, ठीक है। तो अकीदा उन्होंने भी बदल दिया था एक्चुअली, वो ईसाई होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब जो शिब्ली रहमतुल्लाह अलैह थे वो उनके लिए जो है ना वो दुआएं करे चले जा रहे थे और बिल्कुल मायूस नहीं हुए थे। ये नहीं कि मैंने उनसे अभी तक बैत नहीं तोड़ी है और मैं जो वो उनके साथ ही अपना लगा रहूंगा, चाहे वो ईसाई बन जाए मैं भी उनके साथ ईसाई बन जाऊंगा, नहीं, छोड़ के चले गए थे, लेकिन दिल में जो है ना वो उनकी फिक्र थी, उनकी तरफ से एक वो था कि अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक दे देंगे दे देंगे। तो 6 महीने के बाद वापस आए अपने शहर के पास। तो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, ठीक है। और क्या लिखा, शेख साहब के इंतकाल के बाद किसी दूसरे शेख साहब से जोड़ना, ये तो लाजिमी है, अपने शेख का इंतकाल हो जाए तो फिर तो दूसरे शेख से जुड़ना जो है ना, ये तो यानी लाजमी से मुराद ये कि फर्ज वाजिब नहीं है ये। अगर आपको शेख ने जो है वो खुद जो है वो मसनद पे बिठा दिया था, दीन के तबलीग के काम का जिम्मेदारी आपको सौंप दी थी, यानी खिलाफत देना जिसको कहते हैं, तो फिर एज सच कोई ऐसा फर्ज वाजिब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सालिक के ही दर्जे पर हैं और आपकी अभी खुद ही जो है वो एक मेच्योरिटी लेवल आपका अचीव नहीं हुआ है, तो फिर तो शेख साहब के इंतकाल के बाद लाजिमी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, फर्ज वाजिब का लफ्ज तो इधर भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन लाजिमी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा कि भाई अभी भी जो है ना वो आपको शेख की जरूरत है, किसी दूसरे शेख को तलाश करें और फिर उनके साथ जुड़े। नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्टर शॉपिंग तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात होती है ना, अभी तो हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। एनीवे, बहरहाल ये सारी चीजें हैं, बात कहाँ से शुरू हुई थी कि भाई अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है तो भाई उसके ऊपर फोकस करें। अल्लाह ताला आपको यहाँ से वाफिर इल्म और जो जो सफिशेंट है ना आपके लिए वो आपको अता फरमाएगा, और फिर ये भी नहीं कि सिर्फ यहीं से मिलेगा बल्कि यहाँ से रास्ते खुलेंगे, दूसरे वेन्यूज के लिए भी रास्ते खुलेंगे, अल्लाह ताला आपको दूसरे वेन्यूज तक भी पहुंचाएगा और वहां से भी आपको सारे के सारे उलूम जो आपकी जरूरत है वो सारे के सारे मिलेंगे। यही है कॉन्सेप्ट दीन के उलूम के हासिल करने का, खाली किताबों से हासिल करेंगे तो ये चीज नहीं हासिल हो सकती है, शैतान से हिफाजत का जो है ना वो फिर बिल्कुल ही मामला नहीं होता। बहरहाल, तो इन आयात के जो मारूफ मसाइल हम पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा वो भी आगे चलाते हैं, पेज नंबर 295 के ऊपर, के हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी ने उन्होंने फरमाया कि वूहिया इलैया हाज़ल कुरआनु लिउन्ज़िरकुम बिही वमन बलग, ठीक है, ये जो कुरान आपके ऊपर नाजिल किया गया, यानी आप ये कह दीजिए कि मुझ पर बतौर वही कुरान भेजा गया ताकि इसके जरिए मैं तुमको अल्लाह के अजाब से डराऊं और उन लोगों को डराऊं जिनको कयामत तक ये कुरान पहुंचेगा, ठीक है, वमन बलगा, जहां तक ये कुरान पहुंचा, जिस जिसको ये कुरान पहुंचा, ठीक है ना। अब ये कुरान मजीद जो है तो सिर्फ सहाबा कराम तक तो नहीं, अल्लाह ताला ने इस उम्मत ही के जरिए से इस कुरान मजीद को कंपाइल करवाया, उसकी हिफाजत करी, ठीक है ना, और उसको फिर नशर भी फरमाया, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो अब ये कुरान वहां वहां पहुंचा जहां पे कि नबी अलैहिस्सलाम खुद नहीं पहुंचे, ठीक है, और आज के दौर में यानी उसके सहाबा के दौर के बाद तो वहां वहां तक पहुंचा जहां पर सहाबा नहीं पहुंचे, और फिर उसके बाद वहां वहां तक पहुंचा जहां पे ताबईन नहीं पहुंचे, ठीक है ना। और आज तो इंटरनेट के जरिए से और मीडिया के जरिए से काफिरों के घरों के अंदर सारा का सारा कुरान मौजूद है, ठीक है, तो वमन बलागा, ठीक है, तो इसके अंदर फिर सब लोग शामिल हो जाते हैं। तो इससे साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन और आखिरी पैगंबर हैं, और कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। सुभान अल्लाह, इस आयत से खत्म नबूवत का की दलील ले रहे हैं। वरना हम जैसे लोगों के लिए खत्म नबूवत की दलील क्या है कि खातमुल नबीयीन, ठीक है ना, वो बस वो जो एक आयत है, ठीक है, तो बस वही खत्म नबूवत की दलील। लेकिन इस आयत से भी खत्म नबूवत की दलील कैसे मिलती है, वमन बलगा के अल्फाज, कि जिसको ये कुरान मजीद पहुंचा, यानी अगले अगले नबी की कोई जरूरत नहीं है, अगला नबी नहीं आएगा अल्लाह की हिदायत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो कुरान को अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया और पहुंचा दिया, तो कयामत तक उसकी तालीम और तिलावत बाकी रहेगी और लोगों पर उसका इत्तेबा लाजिम रहेगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरे पास तो नबी नहीं पहुंचे थे तो मैं क्यों इत्तेबा करूं, ठीक है, नहीं कुरान तो पहुंचा था ना, ठीक है। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स तक कुरान पहुंच गया वो ऐसा हो गया जैसे उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर ली, वो ऐसा हो गया जैसे, ठीक है ना, ये फर्क है, फर्क होता है उस जुमले से कि जिस तक कुरान पहुंच गया उस तक नबी पहुंच गए, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो आलमुल गैब और हाजिर नाजिर नहीं है, ठीक है, कि हर जगह हाजिर हैं और हर जगह नाजिर हैं, ठीक है, ये अहले सुन्ना वल जमात का अकीदा सही अकीदा नहीं है, तो फिर बिदअतियों ने और ऐसे लोगों ने बना लिया ना ये अकीदा, ठीक है। तो वो ऐसा हो गया जैसे उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी ये एक एक तशबीह है ये, ठीक है, कि भाई नबी अलैहि सलाम ने जो तालीम उम्मत तक पहुंचाई तो उस तालीम के जो सोर्सेज हैं, सबसे पहली सोर्स जो है और हर तालीम की जो जो जड़ है वो तो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अब उसकी एक्सप्लेनेशंस, ठीक है ना, और वो आपको हदीस मुबारक से मिल जाएंगी, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हदीस मुबारक से मिल जाएंगी, और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपके अपने दौर के अंदर वो आपको हदीस से भी नहीं मिलेगी, कुरान मजीद से भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, वो कैसे मिलेगी। उसके लिए पर अल्लाह ताला ने जो वरासतुल अंबिया हैं उनको फिर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज्यारत करनी ना, मैंने कुरान को देख लिया, नबी अलैहिस्सलाम की ज्यारत होगी, अब जो है ना बस मुझे अब किसी से पढ़ने की किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, अब बस मैं कुरान पढ़ूंगा गोया कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे पास मौजूद है, ऐसा नहीं, ठीक है। और एक हदीस में है कि जिस शख्स को कुरान पहुंच गया मैं उसका नजीर, तो भाई वही बात, मैं उसका नजीर हूं, मैं उसका डराने वाला हूं, कि भाई नबी अलैहिस्सलाम ने जो लोगों को डराया तो कुरान मजीद ही के जरिए से डराया ना, ठीक है, तो कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह ताला का कलाम मौजूद है तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसी को यूज करके जो है वो डराया है। तो अब 1400 साल गुजरने के बाद भी कुरान मजीद मौजूद है, तो जितनी उसके अंदर नजीर वाली आयात हैं वो सारी की सारी तो आयात अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो जिस शख्स को कुरान पहुंच गया मैं उसका नजीर हूं क्योंकि मैंने कुरान के जरिए से ही लोगों को डराया था, ठीक है। अब इसका वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब मुझे जो है वो कुरान सीखने की जरूरत नहीं है और बस जो मैं पढ़ूंगा तो मेरी अकल में जो आएगा मतलब बस वही उसका मतलब है, अल्लाह ताला मेरे ऊपर गोया के नुजूल वही अब मेरे ऊपर भी होना शुरू हो गया, ठीक है, कि कुरान के मानी और मआरिफ जो है ना वो अब मेरे ऊपर नाजिल हो रहे हैं और मैं ना अब मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, ना अरबी जुबान सीखने की जरूरत है, अगर अरबी जुबान आती है तो फिर तो और भी ज्यादा हवाओं में उड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर अरबी नहीं आती है तो मुझे अरबी भी सीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं क्या तर्जुमा पढ़ लूंगा या जो है वो अरबी की तिलावत करना कारी साहब से सीख लूंगा, तो बस हिदायत ही हिदायत, माशाल्लाह सारे के सारे दरवाजे खुल गए मेरे ऊपर, हरगिज नहीं, इन अल्फाज का हरगिज ये मतलब नहीं। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ताकीद फरमाई, बल्लिगु अन्नी वलो आया, यानी मेरे अहकाम व तालीमात लोगों तक पहुंचाओ अगरचे के एक आयत ही हो। तो अगरचे के आम तशरीह इस हदीस मुबारक की ये की जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक जो है आगे पहुंचाने के लिए फरमा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आयत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, लेकिन वो जो आयात है कुरान मजीद की अगर इसको इस तरह से देखा जाए जो आयात है कुरान मजीद की तो वो भी तो नबी अलैहिस्सलाम ही की तरफ से लोगों तक पहुंची है ना, तो आयात को पहुंचाओ और फिर उनकी जो एक्सप्लेनेशंस मैंने हदीस के अंदर जो दी हैं जो कि वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत मतलब है तो कुरान मजीद के मुकाबले में तो हदीस बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कुरान की तफसीर की हदीसें हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, वो भी लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है, और फिर मेरे अमल को भी पहुंचाओ, और फिर जो है वो सहाबा कराम जो मेरे सहाबा हैं उन्होंने कुरान को जो समझा है मुझसे तो उसकी समझ को भी आगे पहुंचाओ। ये सारा का सारा हम मुकदमा मारिफुल कुरान के अंदर रमजान मुबारक से थोड़े दिन पहले ही पढ़ के मुकम्मल कर चुके हैं, जो तफसीर की हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जो किताब है उलूमुल कुरान वाली किताब, उसके अंदर बड़े जबरदस्त दलाइल के साथ अकली नकली और तारीखी और हर चीज काफी शाफी उस किताब में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कुरान मजीद की तालीमात के बारे में और तफसीर के बारे में इकट्ठी कर दी है, हम लोगों के लिए बहुत आसान कर दी है, अल्लाह उनको माई तरफ जजाय खैर अता फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा और सेहतमंद रखे जिसने मेरा कोई मकाला सुना, फिर उसको याद रखा, फिर उसको उम्मत तक पहुंचा दिया। नज़्ज़रल्लाहु, अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा रखे कि जिसने मेरी बात को सुना उसको याद रखा और फिर उसको उम्मत तक पहुंचा दिया, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह ताला ने जो चीज पहुंचाई है ना, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो, बजाय इसके कि इधर उधर फोकस करने के ऊपर, क्योंकि उलूम जो हैं वो अगर देखा जाए उस जमाने में भी उलूम जो हैं वो बहुत सारे दूसरे सोर्सेस से भी अवेलेबल थे, राइट। ये जो अहले किताब थे यहूदो नसारा, उनके पास तो आसमानी उलूम मौजूद थे, और जो ग्रीक्स थे और दूसरे जो जो चाइनीज थे, ये चाइनीज क्या है, कितनी एंशियंट सिविलाइजेशन है चाइनीज सिविलाइजेशन, राइट, जाहिल तो नहीं थे, यानी मिट्टी में बैठ करके जो है वो कोई मेंढक तो नहीं खाते रहते थे खाली, पूरी पूरी उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बनाई थी, तो क्या बगैर इल्म के बना ली थी उन्होंने, कोई उलूम नहीं थे उनके पास, थे उनके पास भी उलूम। इजिप्शियन सिविलाइजेशन तो पता नहीं चाइनीज सिविलाइजेशन से ज्यादा पुरानी है या तकरीबन बराबर की है, वो बड़ी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थी, उस जमाने की बात हो रही है ये, ठीक है। और हिंद की जो सिविलाइजेशन थी वो भी जो है वो बहुत ही, यानी ऐसे ऐसे वहां से बाकायदा तिजारत होती थी और उनके पास क्या क्या जो है वो जमाने के हिसाब से टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। तो उलूम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के अलावा भी दीगर सोर्सेस से भी सहाबा कराम को मिल सकते थे और मिलते थे, जो जो जिन्होंने नबुवत से पहले या जिन्होंने इस्लाम लाने से पहले दूसरी जगहों से उलूम हासिल किए, तो दूसरे सोर्सेस अवेलेबल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस सोर्स को जो कि सही सालिम इल्म और खालिसतन फायदेमंद इल्म का जो 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 अल्लाह ताला ने एक चश्मा जारी फरमाया था यहाँ पर, ठीक है ना, इसको इसके ऊपर फोकस करना, और ऐसा फोकस करना कि इसके मुकाबले में किसी भी इल्म को जो है वो अहमियत ना देना, ठीक है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम की डिमांड थी, यही अल्लाह की डिमांड थी, और यही सहाबा कराम की कामयाबी और कामरानी का जो है वो रास्ता था, ठीक है ना। ये नहीं कि थोड़ा सा इधर फोकस किया, थोड़ा सा जो है वो यूनान पे फोकस कर लिया, थोड़ा सा जो है वो इजिप्शियन उलूम पे फोकस कर लिया, थोड़ा सा जो है वो चाइनीज उलूम पे फोकस कर लिया, और थोड़ा जो है वो यहूदो नसारा के उलूम पे फोकस कर लिया, और जो है वो माशाल्लाह हर फन मौला, उर्दू में कहते हैं हर फन मौला बन करके जो है वो कामयाब हो गए, नहीं, ठीक है ना। ये आजिज भी इसी बात के ऊपर आ रहा था, इन्होंने लिख भी दिया इस वाक्य को यहाँ पर, ठीक है, कि हदीस मुबारका के अंदर एक वाक्य है ना कि नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला भी मौजूद थे, ठीक है ना, और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के हाथ में जो है ना वो कुछ ये तौरात के सफ़े आ गए थे, कहीं से उनको उनको मिल गए, उन्होंने जो है पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, तौरात के वर्क उनके पास आ गए उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के पास, उन्होंने उनको पढ़ना शुरू कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदलना शुरू, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना सुर्ख होना शुरू हो गया, रगे मुबारक जो है वो चेहरे मुबारक के ऊपर तन्नी शुरू हो गई, ऐसे नबी अलैहिस्सलाम को जब गुस्सा आता था ना रंग मुबारक तब्दील हो जाता था, और यानी इतना शदीद गुस्सा, उमर रजी अल्लाह जो है पढ़ने में मसरूफ है, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जो हैं उनका तो है ना, उनका तो फोकस ही नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर होता था। वो तो गोया के नजरें हटाते ही नहीं थे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर से, ऐसा उनका मामला था। मतलब ये नहीं कि हर वक्त ही ऐसा रहता था, लेकिन कसरत के साथ ऐसा उनका मामला रहता, ठीक है ना। तो अबू बकर सिद्दीक ने देखा और वो समझ गए कि क्या हो रहा है। उन्होंने उमर, उमर क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे नबी अलैहिस्सलाम जो है वो कितना इसके ऊपर नाराज हो रहे हैं, कितना नहीं? तो उमर रज़ियल्लाहु जो है ना, उनसे एक गलती हो गई, भाई इंसान है, गलती हो गई। सहाबा कराम की खासियत ये नहीं थी कि उनसे कभी गलती नहीं होती थी, गलती होती थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की इस्लाह के ऊपर वो नखरे नहीं करते थे, हुज्जतें नहीं बनाते थे, बल्कि गलती को तस्लीम करके ऐसी तौबा करते थे कि अल्लाह ताला राजी हो जाता था उनसे, ठीक है ना, और ज्यादा रजा बढ़ जाती थी बल्कि उनके लिए। तो उमर रज़ियल्लाहु ने देखा, ओहो ये मुझसे क्या हो गया, उधर ही बोलना शुरू हो गए, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। भाई ये जो अल्फाज है ना, ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें मिले हैं, ठीक है, कि मुझसे गलती हो गई, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं तो आपके नबी होने के ऊपर राजी हूं, मैं ये नहीं कि मैं इधर उधर से जो है वो डिफोकस होकर के जो है वो उलूम हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं। नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर फरमाया कि उमर अगर इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में होते हैं ना, तो उनके लिए भी वाजिब होता कि वो मेरी इत्तबा करें, मेरे हाथ के ऊपर ईमान लेकर के आए, अगर मूसा भी दुनिया में इस वक्त होते तो, ठीक है ना। यही नबी अलैहिस्सलाम ने और फर्दर एम्फेसाइज कर दिया, देखिए ना मैं सहाबी हूं, राइट, ना आप सहाबी हैं, ना अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर इस किस्म के जो है वो गलतियों से हिफाजत फरमाए, गुमराहियों से, कि कोई अपने आप को नबी समझना शुरू कर दे और अपने साथियों को सहाबी समझना शुरू कर दे, राइट, ना कोई नबी बन सकता है, ना कोई उसके साथ नबी का वाला सहाबी बन सकता है, लेकिन मॉडल तो चेंज नहीं होता ना, मॉडल तो चेंज नहीं होता ना, उसूल तो चेंज नहीं होते ना, ठीक है। तो उसूल, और उसूल क्या है, फोकस करना, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्टेड ना होना, फोकस करना, ठीक है। अल्लाह ताला आगे से इंतजाम फरमाते हैं, जैसे अम्मा अब्बा के जरिए से खाने पीने का इंतजाम फरमा दिया, अब औलाद का काम है उसके ऊपर फोकस करना, उसका शुक्र अदा करना, थैंक यू मम्मी, राइट, थैंक यू मॉम, जजाकल्ला अब्बू, आपने हमारे लिए इतनी मेहनत करी, आपने ये सब किया, ये सब हम इंतजाम किया, राइट, उनके साथ जो है वो ऐसा रिश्ता रहा, ठीक है ना। और शैतान जाहिर है उसको पता है कि ये इस तरह से अगर रहेंगे तो इनको फायदे भी बड़े हासिल होंगे, शुक्रगुजारी के ऊपर जो है वो मजीद नेमतें हासिल होना शुरू हो जाएंगी और ये तो कामयाब हो जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं नहीं, इनको डिस्ट्रैक्ट कर 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 करके रखो, ठीक है। क्या लिखा, यकसू हो करके, ऐसे यकसू हो कि शख्स शेख नजर अंदाज, जी अच्छा, आगे फरमाते हैं कि इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताकीद फरमाई। अच्छा क्लासरूम के अंदर जो है ना, वो लोग आकर के क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस ना करें, बल्कि अपने सवाल जो है ना वो दूसरी जगहों से लेकर के आए, ठीक है। मतलब जस्ट इमेजिन कि एक क्लासरूम है, टीचर जो है वो कोई कंटेंट जो है वो वहां पे समझा रहा है, वो कोई वो पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के बाद जो है ना, एक स्टूडेंट जो है वो ये कहे कि मैंने जो है ना वो फलानी वाली किताब पढ़ी थी, तो उसके अंदर जो है वो ऐसा लिखा हुआ था, तो जरा मुझे समझा दीजिए कि वो उसका मतलब क्या है। और थोड़ी देर के बाद फिर एक और स्टूडेंट कहे कि मैंने फलानी यूट्यूब वीडियो सुनी थी, उसके अंदर वो ये कह रहे थे, तो अब आप मुझे समझा दीजिए कि वो क्या कह रहे थे, ठीक है। तो टीचर क्या कहेगा, टीचर को क्या कहना चाहिए, बड़ा जबरदस्त इसका एक जवाब है जो के बड़ा यानी कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है इसका, जवाब दे रहा है इसका, ठीक है ना। अच्छा ये जो सवाल कर रहे हैं ना फलाने किताब के बारे में और फलाने यूट्यूब के बारे में, ये कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, बस ये कोई उन्होंने अच्छी किताब पढ़ ली, कोई फायदेमंद किताब पढ़ ली, अब जो है ना वो क्लास में बैठ करके उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, या उन्होंने कोई और फायदामंद, हम ये भी नहीं कह रहे बेफायदा, कोई ऐसी गलत किस्म की यूट्यूब वीडियोस देखी और उसका सवाल क्लास में कर रहे हैं तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं, नहीं, वो कोई अच्छे से कोई थे स्कॉलर, उनकी उन्होंने यूट्यूब वीडियो देखी, अब जो है वो इस क्लास में आकर के उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब शेख को क्या जवाब देना चाहिए? एग्जैक्टली, माशाल्लाह, खवातीन में भी सही जवाब आ गया एकदम से, ये तो बड़े जबरदस्त बात हो गई आज तो। और जो है मतलब पहला जवाब ही सही जवाब, ये नहीं कि खवातीन की तरफ से सही जवाब आ नहीं सकते, ऑफ कोर्स आ सकते हैं और आते हैं, लेकिन पहले ही जवाब सही आ गया, जुबान सुभान अल्लाह। और मर्दों की तरफ से भी एग्जैक्टली, मर्दों की तरफ से भी बिल्कुल सही जवाब आया, ठीक है ना? तो बाकियों के मैं इतने सारे नहीं पढ़ सकता, लेकिन सही जवाब किया है कि भाई उन्हीं से जाके पूछो ना, जिनकी तुमने यूट्यूब वीडियो देखी है, तो उनसे जाकर के पूछो कि आप जो ये कह रहे थे उसका मतलब क्या है, ठीक है ना? या जिनकी आपने किताब पढ़ी है उनसे जाके पूछो ना कि आप जो कह रहे थे उसका मतलब क्या है, ठीक है ना? अब उसके ऊपर पता है वो क्या जवाब देंगे, भाई उनसे हम कैसे जाके पूछें, उन तक तो हमारा एक्सेस ही नहीं है ना? या वो जो किताब लिखने वाले थे वो तो मर मरा गए, अब तो हम उनसे जाके पूछ ही नहीं सकते। या YouTube वीडियो पे जो अमेरिका में बैठे स्कॉलर साहब जो है वो बयान कर रहे थे, बड़ा अच्छा बयान कर रहे थे, लेकिन हम तो वहां तक जाके उनसे नहीं पूछ सकते, यही जवाब देंगे ना फिर, ठीक है, यही जवाब देंगे ना? तो एग्जैक्टली यही है सारा का सब भाई, टू वे कम्युनिकेशन तो आपकी जिसके साथ है नहीं, आप उधर जो है वो हर वक्त सुनते रहते हैं, और जिनके साथ आपकी टू वे कम्युनिकेशन कि आप उनसे सुन भी सकते हैं, आप उनसे जब सवाल भी कर सकते हैं उस कंटेंट के बारे में, आप उनसे जो है वो मजीद जो है वो इम्प्लीकेशंस भी पूछ सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी पूछ सकते हैं, उनको आपने सुनना ही नहीं है, राइट? ना उनके उनको सुनना है, ना उनके कंटेंट पे गौर करना है, ना उनके जो है वो क्रॉस क्वेश्चन करके जो है वो मवाद को और क्लियरली समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? तो भाई यही है शेख का कॉन्सेप्ट, शेख इज समवन के जिससे कि आपकी टू वे कम्युनिकेशन मौजूद है, वरना तो एक से एक किताब है, एक से एक जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो बड़े बड़े छोटे छोटे और मोटे मोटे स्कॉलर्स मौजूद हैं, राइट? और एक से एक जो है वो उलूम मारिफ के ऊपर आपको वीडियोज मिल जाएंगी और आपको किताबें मिल जाएंगी, लेकिन कैन यू एस्क द क्वेश्चन, कि आप सवाल कर सकते हैं उधर जाकर के, ठीक है? तो वो जो खाना आपके सामने रखा हुआ है जिसको आप खा भी सकते थे, मजीद जो है वो पतीली में से निकाल भी सकते थे और अम्मी को जो है वो अपने फीडबैक भी दे सकते थे, उसके ऊपर आपका कोई फोकस ही नहीं है, पड़ोस में जाकर के इधर भी खाए चले जा रहे हैं, उधर भी खाए चले जा रहे हैं, उधर से भी खाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर भी मुंह मार रहे हैं, उधर भी मुंह मार रहे हैं, ठीक है ना? तो फिर जब माँ को गुस्सा आएगा तो कहेंगे बेटा जाओ तुम जाकर के जो पड़ोस वाली आंटी है ना उन्हीं को अपनी अम्मी बना लो, राइट? उन्हीं को अपनी अम्मी बना लो। उसी तरह से उस्ताद साहब कहेंगे कि भाई तुम जो उनके बारे में हर वक्त तुम्हारे दिमाग में वही चीजें चल रही हैं, तो उन्हीं को अपना बाप बना लो, उन्हीं को अपना स्कॉलर बना लो, उन्हीं को अपना शेख बना लो, और उन्हीं से जाकर के पूछो ना मेरा क्यों सर खाए चले जा रहे हो मुस्तकबिल, मेरी बात तो तुम सुन नहीं रहे हो। ठीक है, तो जिनका एक्सेस है तो उनकी बात सुने और फोकस करें, ठीक है? क्या लिखा है उन्होंने, अब तो मार्फत और सूफियाना बातें, यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर भी करते हैं, ठीक है ना? तो बनाओ जाकर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को अपना शेख बनाओ जाकर के, उसी के मत्थे पर जाओ फिर अपने, हाँ। अच्छा, ये बड़े मजे की उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि एक पड़ोस की आंटी से खाना खा करके आते हैं और उसकी रेसिपी जो है ना वो अम्मी से पूछते हैं कि पड़ोस की आंटी ने जो बड़ा अच्छा खाना बनाया था आप इसकी रेसिपी तो बताएं कि कैसे बनाया था उन्होंने, अल्लाह के बंदे उन्हीं से जाके पूछो ना, ठीक है ना? पंजाबी में कहते हैं उन्हीं को अपना प्यो बना लो, इन्होंने पंजाबी में भी लिख दिया उन्हीं को अपना प्यो बना लो, ठीक है? तो भाई आज की क्लास समझ लें कि शायद आगे तो हम ज्यादा नहीं पढ़ सके, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया ना कि भाई जो आपके सामने खाना रखा गया है उसके ऊपर फोकस करें, वो खाना अल्लाह ही ने रखवाया था, वो अम्मा अब्बा ने अपनी मर्जी से नहीं रख दिया था, जिस तरह शेख ने अगर आपके सामने कोई उलूम की बातें करी हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं करी है, अल्लाह ने ही उनको इस काबिल बनाया है, वो नहीं कर सकते अल्लाह की मर्जी के बगैर, तो इसको अल्लाह की तरफ से समझें और इसकी कदर करें अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, और मल्लम यशकुर इन्नास लम यशकुर अल्लाह के उसूल के मुताबिक शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए, लेकिन असल शुक्रिया अल्लाह का अदा करते हुए, तो अल्लाह ताला उसके जरिए से फिर उसको मजीद बढ़ाएगा। वला लइन शकर तुम लअजीदन्नकुम, इस नेमत का तुम शुक्र करो अल्लाह ताला इस नेमत को तुम्हारे ऊपर बढ़ाएगा। ठीक है ना, ये भी कुरान की है, ये भी किसी मौलवी साहब का वाकया हुआ वादा नहीं है, किसी पीर साहब का किया हुआ वादा नहीं है। लइन शकर तुम लअजीदन्नकुम, मैं बढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर नेमतें। शेख साहब कह रहे हैं मैं तुम्हारे ऊपर नेमतें बढ़ा दूंगा, नो, शेख साहब की इतनी मजाल नहीं है कि वो नेमतें बढ़ाएं, उनके पास नहीं है ये सारे खजाने नेमतें बढ़ाने वाले, ये अल्लाह के पास है, अल्लाह ने बढ़ाना है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए ना, तो फिर तो अल्लाह ताला यानी फिर कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन यही समझ में ना आया तो 28 दिन के जो दुरूस कुरान है ना, उनसे भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ आपको, और आगे भी मजीद अगर 800 दिन के भी दुरूस कुरान सुनते रहेंगे ना, उससे भी फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं, अगर मजीद 800 दिन भी दुरूस कुरान सुनते रहेंगे और उलूम मारिफ सुनते रहेंगे, अगर फोकस नहीं करेंगे, अगर अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम उससे भी आपको फायदा नहीं होगा, उससे भी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुफराने नेमत करने वाला जो है वो अजाब का मुस्तहिक होता है, वो नेमतों का मुस्तहिक नहीं होता, वो अजाब का मुस्तहिक। तो फायदा कैसे होगा जब अजाब मिल रहा है, इधर से फायदा किधर से आएगा फिर? ठीक है, बहरहाल 2 मिनट तो हैं, तो फरमाते हैं, नहीं 5 मिनट है बल्कि, कि आखिरी आयत में उन लोगों के उस कौल की तरदीद है कि हमने यहूद और नसारा से सब तहकीक कर लिए, झूठ बोलते थे। ठीक है, तो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और नबूवत की गवाही नहीं देता, तो इसके मुतालिक इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना, देखो तुम तो झूठ बोलते हो ना, झूठे किस्म के इंसान हो, तकजीब करते हो, इससे बड़ा झूठ तो और कोई है ही नहीं, कि सच्चे की तकजीब करते हैं, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। इसी वजह से तकजीब का जो लफ्ज है ना, ये असल में किज़्ब की ये मुबालगा है, किज़्ब के अंदर, किज़्ब का मतलब होता है झूठ बोलना, और तकजीब का मतलब होता है किसी किसी सच्चे को झूठा करार देना, ये झूठ की इंतहा है। ये जिस तरह एक दफा बात हुई थी ना जहालत की इंतहा, उसी तरह झूठ की भी इंतहा होती है, वो क्या है, तकजीब। सर्फ जानने वाले जानते हैं कि ये जो तुलासी मजीद फीही के जो अबवाब होते हैं ना, इनके अंदर अक्सर के अंदर जो है वो असल में उसी जो तुलासी मुजर्रत बाब जो होता है उसकी ही इसके अंदर इंतहा होती है, यानी मुबालगा होता है इनके अंदर। कदबा, इसकी इसका मुबालगा क्या है, कदबा कदबा, बहुत ज्यादा बड़ा झूठ बोला इसने, कि सच्चे को जो है, सादिक को जो है, इसने झूठा बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो तुम तो हो ही झूठे ना, तो हकीकत क्या है वो मैं बता दूं तुम्हें, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं बता दूं तुम्हारी हकीकत क्या है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअरिफूनहू कमा यअरिफून अबनाअहुम। ठीक है, यानी यहूद और नसारा तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। वजह यह है कि तौरात और इंजील में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा हुलिया शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतन असली, फिर वतन हिजरत का, यानी इन लोगों को ये भी पता था कि नबी अलैहि सलाम मदीना मुनव्वरा में पहले नहीं आएंगे, मक्का मुकरमा में पहले जाएंगे। है ना, अजीब बच्चों की क्लास हो रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने अजीब एक नुक्ता खोला, वरना पहले कहीं पर पढ़ा हुआ नहीं देखा था। भाई वो होता है ना, अल्लाह ताला हमें वास्ता बना लें, अल्लाह हमारी तो इसी में निजात है, कबूल भी फरमा लें, खाली वास्ता बनाने में भी नहीं बल्कि कबूल भी फरमा लें, तब जो है वो निजात मिलेगी। बहरहाल नुक्ता आया कि भाई ये मक्का मुकरमा क्यों नहीं मुंह, मदीना मुनव्वरा क्यों मुंह पाए, हालांकि उनको तो पता था कि नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा पैदा होंगे, क्योंकि मक्का मुकरमा में तकलीफों का दौर था, आजमाइशों का दौर था, वहां पे कोई निजाम नहीं था, वहां पे अमारत नहीं थी, वहां पे खिलाफत नहीं थी, वहां पर जो है ना वो ये सब कुछ नहीं था, वहां तो बस जो है ना वो या तो वर्बल असॉल्ट्स थे या फिजिकल असॉल्ट्स थे मक्का मुकरमा के। तो इन खबीसों ने मक्का मुकरमा में आखिरी नबी, जिसको कि ये समझ रहे थे कि हमारे बनी इसराइल में से ही आएगा, राइट, इनका क्या गुमान था? इनका ये गुमान था ना कि आखिरी नबी जो आएंगे वो बनी इसराइल में से आएंगे, यानी इनके अपनों में से आएंगे। लेकिन इवन अपने नबी, जिसको ये अपना नबी ही गर्दानते थे, इवन अपने नबी को भी रिसीव करने के लिए इन्होंने तकलीफें उठानी बर्दाश्त नहीं करी, गवारा नहीं करी इन्होंने कि भाई अपने नबी आ रहे हैं तो जरा तकलीफें बर्दाश्त कर लेना उनकी वजह से, मक्का मुकरमा मूव हो जाओ। नहीं मूव हुए मक्का मुकरमा। कैसे खबीस लोग थे और हैं आज तक, ठीक है ना? तस्वीर करें जरा इस बात को, कितने घटिया किस्म के लोग हैं। सही, वो तो बाद में पता चला ना कि अपनों में से नहीं आए, बनी इस्माइल में से आ गए, वो तो बाद में इनको पता चला ना, ठीक है। बहरहाल तो जानते तो ये सब कुछ थे, तो भी फरमा रहे हैं कि वतन असली का भी इनको पता था, फिर वतन हिजरत का भी इनको पता था, और आपसे वसलम के आदात और अखलाक और आपसे वसलम के कारनामों का ऐसा तफसीली जिक्र है कि इसके बाद किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रहती। बल्कि सिर्फ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जिक्र नहीं, आपसे वसलम के सहाबे कराम के हालात का मुफस्सल तज़किरा तक तौरात और इंजील में मौजूद। कितने वाकयात जो हैं वो सीरत में पता चलते हैं, उमर फारूक के बारे में हैं, तो अबू बकर सिद्दीक के बारे में हैं, तो खुलफा हत्ता के उनके जमाने के वाकयात के बारे में हैं, कैसे बैतुल मुकद्दस में वो तशरीफ लाएंगे, क्या उनका हुलिया होगा, कैसे जो है वो दाखिल होंगे, एक ऐसी 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 तफसीलात आप सल्लम के सहाबे कराम के हालात का। इसीलिए इसका कोई इम्कान नहीं कि जो शख्स तौरात और इंजील को पढ़ता और उस पर ईमान रखता हो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहचाने, तसव्वुर ही नहीं हो सकता। इस वक्त इस जगह हक तआला ने तशबीह के मौके पर इरशाद फरमाया कि जैसे लोग अपने बच्चों को पहचानते हैं, ये नहीं फरमाया कि जैसे बच्चे अपने माँ बाप को पहचानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या नुकता हजरत ने लिखा है कि ये नहीं फरमाया कि जैसे बच्चे अपने माँ बाप को पहचानते हैं। वजह यह है कि माँ बाप की पहचान अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा तफसीली और यकीनी होती है। बच्चों के बदन का हर हिस्सा, ठीक है ना, क्योंकि जब बेबी जो होता है तो वो तो अपना कुछ भी नहीं कर सकता, तो माँ बाप को तो उनके यानी एक एक जो है वो जुज्वे बदन का पता होता है, माँ बाप के सामने आता रहता है, वो बचपन से लेकर जवानी तक उनके हाथों और गोद में परवरिश पाते हैं। इसलिए वो जितना अपनी औलाद को पहचान सकते हैं उतना औलाद उनको नहीं पहचान सकते, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने बास, अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला जो पहले यहूद में दाखिल थे फिर मुसलमान हो गए, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे सवाल किया कि अल्लाह तआला ने कुरान मजीद में खबर दी है कि तुम लोग हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते हो जैसे अपनी औलाद को, इसकी क्या वजह है? अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हाँ, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला के बयान करदा औसाफ के साथ जानते हैं जो अल्लाह तआला ने तौरात में नाजिल फरमाया, इसलिए उसका इल्म हमें यकीनी और कतई तौर पर है, बखिलाफ अपनी औलाद के कि उसमें शुबो हो सकता है कि ये हमारी औलाद है भी या नहीं, ठीक है ना? ये तो मुमकिन है, ठीक है ना, कि औलाद में शुबो हो जाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम में शुबो नहीं हो सकता, इतनी जो है वो निशानियां मौजूद हैं, ठीक है ना। आजकल जो है वो डीएनए टेस्टिंग के जरिए से जो है ना वो औलाद का पता चला लेते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए जो है ना ये अल्लाह ताला ने एक निशानी रखी है, वरना डीएनए टेस्टिंग अगर ना हो और किसी का जो है वो औलाद खो जाए तो फिर तो एक उसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है, हालात की वजह से उसका हुलिया भी चेंज हो जाता है, बंदा जो है वो अपनी औलाद सामने आए तो नहीं पहचान सकता क्योंकि उसके पास निशानियां तो मौजूद नहीं है कि औलाद ऐसी होगी, फिर उसके साथ जो है वो इतना अरसा गुजर जाने के बाद अब उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, फिर इतना अरसा गुजर जाने के बाद अब उसके ऊपर ऐसे अहवाल आएंगे, ये तो किसी माँ बाप के पास मौजूद नहीं होता कि औलाद के ऊपर ये तगैयुरात और तब्दीलियां आएंगी औलाद के ऊपर। तो औलाद अगर निगाहों से ओझल हो जाए, कुछ सालों तक ओझल हो जाए और कुछ साल के बाद सामने आए, तो माँ बाप को जो अगर तब्दीलियां उसमें हो चुकी हैं कैसे पता चलेगा कि क्या तब्दीलियां हो गई हैं उसमें? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के अंदर क्या तब्दीलियां आएंगी, किस दौर के जमाने में उनका क्या हाल होगा, सब कुछ इनको अल्लाह ताला ने बता दिया, ठीक है ना। अल्लाह अकबर कबीरा, हैरान होते हैं इन सब बातों को पढ़ करके समझ करके। हजरत जैद बिन साना जो अहले किताब में से हैं, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात इंजील के बयान करदा औसाफ ही के जरिए से पहचाना था, सिर्फ एक वस्फ ऐसा था जिसकी उनको पहले तस्दीक नहीं हो सकी थी, तो इम्तिहान के बाद तस्दीक हुई, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म आपके गुस्से पर गालिब होगा। नहीं, फिर वो उन्होंने सारा का सारा ड्रामा खेला था कि नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो को जो है वो उधार दे दिया था, और फिर जो है वो उधार की जो है वो तलब वो कर डिमांड करने के लिए आ गए थे, और बड़ी सख्ती से डिमांड करना शुरू कर दिया था। वो सारा वाकया उन्हीं का है। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिलम आपके गुस्से पर गालिब होगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच कर तजुर्बा किया तो ये सिफत भी पूरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। आखिर आयत में फरमाया कि ये अहले किताब जो पूरी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के बावजूद मुसलमान नहीं होते, ये अपने हाथों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और खसारे में पड़ रहे हैं। अल्लदीन खसरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। ठीक है ना, यानी इतना इल्म मिलने के बाद भी जो इल्म पे अमल ना करे, तस्लीम ना करे, बदलने की कोशिशें करना शुरू कर दे, तो वो भी फिर उसका भी वही हशर होता है कि जो के जाहिलों का, जिनके पास इल्म नहीं था, उन्होंने खाली जो है ना वो निमट जिद और हठधर्मी की वजह से बात मानने से इनकार कर दिया। जहालत भी इनके पास थी, इन तो था ही नहीं इनके पास। तो वही हशर जो है वो इल्म वालों के साथ भी, उनको ही बारे में भी अल्लाह ताला ने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो इनके बारे में इस्तेमाल किए, अल्लदीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा, किसी और का मैसेज आया हुआ था, जैसे बनी इसराइल ने मूसा अलैहि सलाम को जिहाद पे जाने से मना कर दिया था, कारू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा फज़हबा अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, हम तो इधर ही बैठे हुए, तुम और तुम्हारा रब जाओ। तो मूसा अलैहि सलाम कौन सा बनी इस्माइल? इस्माइल में से थे मूसा अलैहि सलाम के, राइट? तो ऐसे खबीस लोग थे और ऐसे खबीस लोग आज भी हैं कि इनको सिर्फ जो है ना वो अपने नफ्स के खिलाफ जो भी चीज हो उसकी मुखालफत करनी, चाहे वो अपनों से मिले चाहे वो गैरों से मिले। ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि गैर से मिल रही है इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं, अगर अपनों से मिलता तो मुखालफत ना करते। नहीं, ये हर सूरत मुखालफत करेंगे क्योंकि इनका नफ्स इतना मोटा है, राइट? और इनका जो इल्म है ना, इस इल्म ने इनके नफ्स को और ज्यादा मोटा कर दिया, और ज्यादा मोटा कर दिया। ठीक है ना, ये इल्म ऐसा सबब है कि अगर इसका हक ना अदा किया जाए, यानी इसका हक क्या है, इल्म का हक क्या है कि जितना इल्म हासिल होता जाए इंसान अपने आप को उतना ही कमजोर समझना शुरू हो जाए, उतना ही जो है ना वो लाचार समझना शुरू हो जाए, ये है इल्म का हक अदा करना। ठीक है ना, इल्म हासिल होने से अपनी जहालत खुलती है, राइट? इल्म हासिल होने से अपनी यानी बेकदरी खुलती है कि मेरी क्या हैसियत है, मैं तो कुछ भी नहीं। ये है इल्म का सही फायदा। और जो अपनी आजिजी और इनकिसारी के रास्ते पे चलने के बजाय इल्म की बुनियाद पर वो उस तरफ चलना, दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, अब ये इल्म जो है ना वो उसको इतना बर्बाद कर देता है, इतना उसको खराब कर देता है कि ये मान के नहीं देता, ये मान के नहीं देता। इसी वजह से आप देखें जो हमारी क्लासेस होती हैं साल के दौरान, उसमें तो ये बातें हो चुकी हैं अलहमदुल्ला, और उनके साथ नोट्स भी शेयर हो चुके हैं, उम्मीद है कि याद होगा, जो लोग थे उसमें मौजूद उनको याद होगा कि क्लास में हमने कितनी तफसील से बात करी थी कि अगर आप नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जो कौमें मौजूद थी उन कौमों के ऊपर नजर डालें तो एक कौम कहलाएगी यहूद की कौम, एक कौम कहलाएगी नसारा की कौम, एक कौम कहलाएगी ये अरब की कौम, और एक कौम कहलाएगी फारस की कौम, पर्शियंस, और एक कौम कहलाएगी ये हिंदुस्तान की कौम और चाइना की कौम। ये मुख्तलिफ अकवाम थी उस जमाने में, ठीक है ना? अब इनमें कौन सी कौम थी कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम की सारी तालीमात पहुंच गई, ठीक है, लेकिन उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को सबसे कम तस्लीम किया, यानी उनमें से मुसलमान होने वाले सबसे कम लोग थे, कि तालीमात भी सारी की सारी पहुंच गई लेकिन मुसलमान भी सबसे कम लोग हुए, कौन सी वो कौम थी? ये नहीं थे अरब के लोग, नहीं थे कि उन तक तालीमात पहुंच गई लेकिन उनमें से बहुत कम लोग मुसलमान हुए, अरब तो तकरीबन सारे मुसलमान हो गए, राइट? यहू ये नसारा में से भी बहुत सारे मुसलमान हो गए, लेकिन कम हुए, लेकिन बहुत सारे फिर भी हो गए, लेकिन जो सबसे कम मुसलमान हुए हैं, गिनती पे आप उनकी जो है वो तादाद गिन सकते हैं अपने हाथों की उंगलियों के ऊपर, यहूद, यहूद थे वो वाले कौम, ठीक है ना। क्योंकि इल्म सबसे ज्यादा इन्हीं के पास, और इन्होंने आजजी और इनके सारी का रास्ता, हकीकत को तस्लीम करने का रास्ता इख्तियार करने के बजाय इन्होंने जो है वो अपने नफ्स परस्ती वाला रास्ता इख्तियार किया, हिदायत से महरूम हो गए और सबसे मबगूज कौम बन गए, गैर मगबूब अलैहिम, ये यहूद की कौम है, अल्लाह ताला का गजब हो गया इनके ऊपर, ठीक है। तो इल्म जो है ना, ये इससे बहुत बड़ा मुकाम भी मिलता है अगर इसका हक अदा किया जाए, और अगर हक ना अदा किया जाए तो सबसे बड़ी तबाही भी इल्मी की वजह से, ठीक है। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाह।